इन कालों में जो छह छह विभाग हैं, उन विभागों को अपन देखें तो अवसर्पिणी काल का जो प्रथम विभाग है उसका नाम है सुषमा सुषमा काल। चार कोड़ा कोड़ी सागर का होता है और उस काल में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भी होते हैं और उत्तम भोग भूमि के जीव इस भरत क्षेत्र की धरती पर पाए जाते हैं। फिर उस काल की समाप्ति होने पर दूसरा काल शुरू होता है जिसका नाम है सुषमा। उस काल में मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था हो जाती है और उसकी अवधि 3 कोड़ा कोड़ी सागर। जब वो अवधि भी पूर्ण होती है तब तृतीय काल प्रारंभ होता है अवसर्पिणी का। उस काल में जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था आ जाती है और उसकी अवधि 2 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। तो 3 काल हो गए और कितने कोड़ा कोड़ी सागर हो गए? 8। सुषमा सुषमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर, सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का और तीसरे का नाम है सुषमा दुष्मा। सुषमा दुष्मा उसकी अवधि 2 कोड़ा कोड़ी सागर। तो कुल मिलाकर अवसर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर में से 9 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि में व्यतीत हो जाते हैं। और जब भोग भूमि का अंत होने लगता है तब कुछ काल के लिए यहाँ की जो व्यवस्था है भरत और ऐरावत क्षेत्रों की उसको भोग भूमि प्रतिभाग कहा गया है। प्रतिभाग और उस समय कुलकर्मों की उत्पत्ति होगी जिनको शास्त्रों में मनु भी कहते हैं। मनु और मनु शब्द से मानव बनता है। तो वो 14 कुलकर भोग भूमि पूर्णता की ओर है और कर्म भूमि प्रारंभ की ओर है, बीच का एक समय है जिसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, परिवर्तन का काल। तो उस समय बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जो मनुष्य हमेशा शुभ लेशिया में रहते थे वो उस परिवर्तन काल में कभी कभी अशुभ लेशिया में चले जाते हैं और कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं। फिर कुलकरों को निश्चित करना पड़ता है कि ऐसी त्रुटि करने वालों को कैसे सुधारना। तो प्रथम 5 कुलकर दंड व्यवस्था निर्धारित करते हैं और त्रुटि करने वाले को जन समूह के मध्य खड़ा करके एक अक्षर का उच्चारण करते हैं, हा। हा का अर्थ होता है खेद है, दुख है कि तुमने ऐसी त्रुटि की है, तुमने ऐसा अपराध किया। लेकिन उसके बाद कषायों में थोड़ी और वृद्धि होती है। तब प्रथम 5 कुलकरों ने जो हा दंड निर्धारित किया था उसके बाद वाले 5 कुलकरों को 2 दंड निर्धारित करने पड़ते हैं, हा और दूसरा मा। इसका अर्थ होता है कि उस अपराधी को समूह में खड़ा करके सारे जन समूह के बीच दंडित करते हुए दो अक्षरों का उच्चारण किया जाता, हाँ खेद है तुमने अपराध किया और माँ अब मत करना। समझ में आया? और उसके बाद कितने कुलकर बाकी रह गए? 14 कुलकर होते हैं। तो अंतिम जो 4 कुलकर होते हैं वो एक तीसरा दंड और निर्धारित करते हैं जन समूह में उस अपराधी को खड़ा करके, हा मां धिक खेद है तुमने अपराध किया अब मत करना, धिक्कार है। इन 3 दंडों से उस काल की प्रजा सही रास्ते पर आ जाती है। लेकिन 14वें कुलकर के जो पुत्र होते हैं वो प्रथम तीर्थंकर होते हैं। जैसे इस हुंडावसर्पिणी काल में तृतीय काल जब समाप्त हो रहा था, जब भोग भूमि प्रतिभाग की अवस्था थी, तब नाभिराय नामक अंतिम कुलकर और उनकी महारानी मरुदेवी हुई थी और उनके सुपुत्र तीर्थंकर हमेशा अपनी माँ के इकलौते पुत्र होते हैं। लेकिन पिता के इकलौते पुत्र ऐसा नियम नहीं है। जैसे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, वो अपनी माँ ऐरा देवी के तो इकलौते पुत्र थे, लेकिन उनके पिता की जो दूसरी रानी थी उनसे उत्पन्न होने वाले जो पुत्र थे उनके मौसेर भाई भी थे। पिता दोनों के एक थे, लेकिन तीर्थंकर के पिता के तो 2 पुत्र हो सकते हैं लेकिन माँ को एक ही पुत्र होगा। तो इस हुंडावसर्पिणी काल के प्रभाव से बहुत सारी जो सामान्य व्यवस्थाएं होती हैं उसमें परिवर्तन आता है। जैसे ये तीसरा काल समाप्त नहीं हुआ और तीर्थंकर पैदा हो गए, जबकि नियम ये है कि 4थे काल में ही तीर्थंकरों का जन्म होगा। 24 तीर्थंकर 4थे काल में होंगे, लेकिन आदिनाथ भगवान 3रे काल में जन्म ले लेते हैं और 4थे काल में 58 शलाका पुरुष होते हैं। शलाका पुरुषों की कुल गणना 63 है, लेकिन हुंडावसर्पिणी काल के प्रभाव से 63 के स्थान पर 58 शलाका पुरुष होते हैं। ये सारी चर्चाएं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये जानकारी देना है इस कथा के प्रारंभ में कि श्रीपाल और मैना सुंदरी कौन से तीर्थंकर के काल में हुए थे, क्योंकि अभी भारत के अधिकांश जनता इस बात से अपरिचित है कि श्रीपाल मैना सुंदरी कब हुए थे। इतना पता है कि हुए थे 4थे काल में, तो उसकी जानकारी के लिए भूमिका है। तो 58 शलाका पुरुष कैसे हो गए ये सुनना सर्पणी में, ध्यान से सुनना। आदिनाथ भगवान 4थे काल में नहीं हुए, 3रे काल में जन्मे भी और 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी रह गए थे, 3रे काल में ही वो कैलाश गिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष चले गए। तो 63 में से एक कम हो गए तीर्थंकर। फिर जो प्रथम नारायण थे, 9 नारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, 9 प्रतिनारायण भी होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं और 24 तीर्थंकर होते हैं। इन सब की कुल गिनती 63 होती है, 24 और 12, 24 और 12 36, फिर 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 और 9 9 27, तो 36 और 27 63, तो उन 63 में से एक तीर्थंकर तृतीय काल में हो गया, चौथे काल में नहीं हुए, तो एक कम हो गया। फिर प्रथम नारायण जो थे त्रिपृष्ठ जिनका नाम था, और जो श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के तीर्थ काल में उत्पन्न हुए थे, उन्हीं का जीव अंतिम तीर्थंकर के पद को प्राप्त हुआ है। वो मारीच का ही जीव था, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, जो प्रथम नारायण के पद को भी प्राप्त हुआ और अंतिम तीर्थंकर के पद को भी प्राप्त हुआ। तो फिर जीव एक ही रहा, पद दो धारण कर लिए उस एक ही जीव में, तो फिर जीवों की अपेक्षा से गिने तो फिर कम हो गए गिने। और 63 में से 5 कम करने पर 58 की संख्या आती है, बाकी 3 कौन से हैं आप सब जानते हैं। वो 3 ऐसे हैं जो तीर्थंकर भी हुए और चक्रवर्ती भी हुए, अब ख्याल में आ गया। 5वें चक्रवर्ती और 16वें तीर्थंकर एक ही जीव, 6ठे चक्रवर्ती और 17वें तीर्थंकर एक ही जीव, 7वें चक्रवर्ती और 18वें तीर्थंकर एक ही जीव, तो कुल कितने कम हो गए? एक आदिनाथ भगवान, फिर एक नारायण और एक तीर्थंकर, ये एक ही जीव होने के कारण एक पद कम हो गया और बाकी 3 शांति कुंत और हरनाथ भगवान, ये चक्रवर्ती पहले हुए तीर्थंकर बाद में हुए। तो इस तरह, और एक निक्षेप की अपेक्षा से देखें, नए की अपेक्षा से देखें, तो वो शुरू से ही तीर्थंकर, पंचकल्याण किन के हुए तीर्थंकर भगवान के, तो भले उन्होंने चक्रवर्ती का राज्य संभाला हो लेकिन गर्भ कल्याणक तो तीर्थंकर का हुआ था, जन्म कल्याणक भी, जन्माभिषेक भी तीर्थंकर का हुआ था। ऐसे 5 जीव कम हो गए। और मुंडावसर्पणी में क्या होता है? चक्रवर्ती का मान भंग होता है। कौन से चक्रवर्ती का मान भंग हो गया? सुना है आपने, छोटे भाई बाहुबली ने बड़े भाई भरत को पराजित कर दिया, 3 युद्धों में पराजित कर दिया, चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। फिर तीर्थंकरों के घर पुत्रियों का जन्म, ये कहां हुआ? ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान की 2 पुत्रियां थी, क्या नाम था उनका? राम्य और सुंदरी। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से होने वाले परिणमन हैं जो इसी काल में पाए जाते हैं, बाकी अवसर पीढ़ियों में नहीं पाए जाते हैं। तो आदिनाथ भगवान का तीर्थ शासन काल 50,00,000 करोड़ सागर का था। अब देखिए, कुल 1,00,001 कोड़ा कोड़ी सागर बचा है समय, किसमें? अवसर पीढ़ी काल में, क्योंकि 9 कोड़ा कोड़ी सागर का समय तो भोगभूमि में निकल गया, अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर का काल बचा है और उसमें बचे हुए 3 काल आने वाले हैं। तो 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का वो चतुर्थ काल होता है जिसका नाम है दुःक्षणा सुषमा। देखो, इनके नाम को याद करने की ट्रिक बतलाते हैं आपको, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे सारे नाम। फिर पंचम काल आता है जिसका नाम है दुःक्षणा, इसको हिंदी में दुखमा बोलते हैं और संस्कृत में दुः क्षमा, दु के बाद विसर्ग और उसके बाद षट्फोर का श और मा, दुः क्षमा। और 6ठा काल जो होता है उसके 2 नाम है, अति दुःक्षमा अथवा दुःक्षमा दुःक्षमा, 21,000 वर्ष का पंचम काल होता है, और अब कितने वर्ष बाकी रह गए अवसर पीढ़ी में? 21,000। तो 21,000 वर्ष का छठा काल भी होता है। अब नाम याद रखने की तरकीब ये है कि शुरू के तीन नाम सु से शुरू होते हैं, सुषमा सुषमा पहला काल, दूसरा सिर्फ सुषमा, और तीसरा सुषमा दुःक्षमा। अब याद हो गया सबको, शुरू के तीन नाम सु से शुरू होते हैं और अंत के तीन नाम दु से शुरू होते हैं। दुःक्षमा सुषमा ये चौथा काल है, इसके पश्चात अकेला दुःक्षमा पांचवा काल, और छठा दुःक्षमा दुःक्षमा। तो इस तरह इन छह कालों में से जब चौथा काल चल रहा था तब प्रथम तीर्थंकर तो मोक्ष जा चुके थे, तृतीय काल में ऋषभदेव भगवान, द्वितीय तीर्थंकर 50,00,000 करोड़ सागर के पश्चात हुए, यानी समझ लीजिए कि आधा चौथा काल निकल गया तब जाकर दूसरे तीर्थंकर हुए। आदिनाथ भगवान का तीर्थ काल सबसे बड़ा था, फिर अजितनाथ भगवान हुए, और अजितनाथ भगवान का तीर्थ शासन 30,00,000 करोड़ सागर तक चला। मतलब समझ लीजिए कि वो 50 और ये 30, 80,00,000 करोड़ सागर तो दो तीर्थंकरों ने अपने तीर्थों में लगा दिए, और इसके बाद फिर शंभवनाथ भगवान ने, संभव और संभव दो नाम आते हैं। आप लोग संभव अधिक बोलते हैं, बाकी आचार्य सनंद भद्र स्वामी आदि आचार्यों ने संभव ऐसा नाम लिया है। उसके बाद फिर अभिनंदन नाथ भगवान ने, फिर पांचवें तीर्थंकर सुमति नाथ भगवान, छठे पद्म प्रभ, सातवें सुपार्श्वनाथ, अष्टम तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान, चंदा प्रभु नहीं और चंद्र प्रभु भी नहीं, चंद्र प्रभ, जैसे पद्म प्रभ पद्म प्रभु नहीं, पद्म प्रभ वैसे चंद्र प्रभ। फिर नवम तीर्थंकर के दो नाम सुवेदीनाथ और पुष्पनाथ जिन्हें, दशम तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान, 11वें श्रेयोनाथ भगवान, ऐसे बोलने में अपन श्रेयांशनाथ भगवान बोलते हैं लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार श्रेयोनाथ, 12वें वासुपूज्य भगवान, 13वें विमलनाथ भगवान, 14वें अनंतनाथ भगवान। अनंतनाथ भगवान का एक नाम है अनंत चित्त, अनंत चित्त भगवान। ये नाथ तो आदर सूचक शब्द भगवान के नाम के साथ जोड़े जाते हैं, मूल नाम तो उनका जितना है उतना ही होता है, लेकिन अगर विनय के साथ नाम लेने के लिए नाथ जोड़ लेते हैं। फिर धर्मनाथ भगवान, फिर शांतिनाथ भगवान, फिर कुंधुनाथ, अरनाथ, अरहनाथ नहीं है, अरनाथ है, ह नहीं है उसमें, अरनाथ। फिर मल्लिनाथ भगवान, श्वेतांबर मठ में मल्ली कुमारी मानते हैं, लेकिन दिगंबर रामनाय में मल्लिनाथ भगवान है, और उनके पश्चात मुनि सुव्रत तीर्थंकर। मुनि सुव्रत भगवान जब मोक्ष चले गए तो उनके मोक्ष चले जाने के बाद अब 24 तीर्थंकरों के काल में 12 चक्रवर्ती भी हो गए। तो प्रथम चक्रवर्ती कौन से तीर्थंकर के काल में हुए थे? आदिनाथ भगवान के, क्योंकि उन्हीं के पुत्र थे। फिर द्वितीय चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान के चचेरे भाई थे, उनका नाम था सगर चक्रवर्ती। सगर तृतीय चक्रवर्ती धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान के काल में हुए थे, जिनका नाम था मघवा मघवा। चौथे भी धर्मनाथ भगवान के काल में हुए, उनका नाम सनत कुमार, जिनकी कथा महोत्सव के समय पर्वत पाटिया में आई थी, जिनको कोढ़ हो गया था लेकिन फिर भी उन्होंने उसका कोई उपचार न कराकर उस रोग परिषद पर विजय प्राप्त की थी और अंत में केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया था। फिर शांतिनाथ भगवान के समय कोई चक्रवर्ती नहीं हुए क्योंकि वो स्वयं थे। चार के बाद पांचवा क्रमांक चक्रवर्ती का स्वयं शांतिनाथ भगवान, छठे कुंधुनाथ भगवान, सातवें अरनाथ भगवान, और अरनाथ भगवान के मोक्ष चले जाने के पश्चात आठवें चक्रवर्ती सुभम चक्रवर्ती थे। फिर मल्लिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात नवम चक्रवर्ती महापद्म हुए, और मुनि सुव्रत तीर्थंकर भगवान के मोक्ष चले जाने के बाद दशम चक्रवर्ती हरिश्रेय हुए, हरिश्रेय चक्रवर्ती। फिर नमिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद जयसेन चक्रवर्ती हुए, ग्यारहवें, और नेमिनाथ भगवान के मोक्ष चले जाने के पश्चात ब्रह्मदत्त नामक बारहवां चक्रवर्ती हुआ। इन बारह चक्रवर्तियों में आठ मोक्ष को प्राप्त हुए, दो देवगति को प्राप्त हुए और दो नरकगामी भी हुए। सुभाम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सप्तम पृथ्वी के नारद बने। हरिश्रेण चक्रवर्ती के मोक्ष चले जाने के पश्चात फिर इस पृथ्वी पर मुनि सुव्रत भगवान के ही तीर्थ शासन काल में एक ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई जिस घटना का नाम है रामायण। अष्टम बलभद्र नारायण और प्रतिनारायण की पूरी कथा का नाम रामायण की कथा है। वो हरिश्रेय चक्रवर्ती के मोक्ष चले जाने के बाद श्री राम लक्ष्मण रावण इनकी उत्पत्ति हुई और इनके समय के व्यतीत हो जाने पर, क्योंकि समय तो रुकता नहीं किसी के लिए, रामायण भी बीत गई। उसके बाद मुनि सुव्रत भगवान के तीर्थ शासन काल में चंपा नरेश अंगराज श्रीपाल और उज्जैनी की राजकुमारी महासती मैना सुंदरी इनकी उत्पत्ति हुई। अर्थात आज के दिन जो कथा चली है इस कथा में इतिहास अधिक था और सारांश में केवल इतना बताया गया कि श्रीपाल और मैना सुंदरी 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान के तीर्थ शासन काल में ही उत्पन्न हुए थे। और किनके बाद हुए थे? भगवान राम के मोक्ष चले जाने के बाद। तो इस तरह आज की कथा यहाँ पर अपन पूर्ण करते हैं और इसके बाद की जो कथा होगी वो यथासमय प्रारंभ की जाएगी। आज किन्हीं कारणों से विलंब हो गया है और उसके लिए क्या कह रहे हैं हम आपसे, कुछ शारीरिक स्थिति ऐसी रही हमारी जिसके कारण आज ऐसा हो गया और फिर कुछ कार्यक्रम भी हुए ध्वज वंदन आदि, तो आज इतनी कथा आपको मिली है और इस कथा में कुल इतना सार है कि श्रीपाल और मैना सुंदरी का काल 20वें तीर्थंकर का काल है। हरिहंत को नमन, हरिहंत को नमन,
हरिहंत को नमन, हरिहंत को नमन,
सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन,
सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन,
आचार्य को नमन, आचार्य को नमन,
आचार्य को नमन, आचार्य को नमन,
उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन,
सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन,
ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन,
ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन,
इनके नमन से हो तिपथ पे गमन,
गुजरात में प्रथम बार
पहले हो चुके
प्रथम पहले सूरत में प्रथम बार ये कथा का हमें अवसर पूज्य महाराज जी के बुखार के